بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 19 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں. برائے بی اے، بی ایس سی، بی کام، جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ صفحہ نمبر 206 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 19. نمبر 6، ہر حکومت کا فرض ہوگا کہ بچوں کو اغوا کرنے یا ان کو زبردستی دوسرے ملکوں میں لے جانے یا رکھنے کی ہر کوشش کو روکے اور ناکام بنائے. نمبر 7، کسی بچے کی ذاتی زندگی، اس کے خاندان، گھر یا ذاتی خط و کتابت میں کسی طرح کی غیر قانونی مداخلت نہیں ہونے دی جائے گی. نمبر 8، بچوں کی اچھی تربیت اور بہتر دیکھ بھال ماں اور باپ دونوں کی یا سرپرست کی بنیادی ذمہ داری سے حکومت ہر طرح سے مدد کرے گی. ایسے بچے جن کا کوئی گھر بار نہ ہو یا ان کے لیے گھر جیسا ماحول مہیا کرے گی یا ایسے ادارے قائم کرے گی جو ان کی بہتر دیکھ بھال کر سکیں. نمبر 9، ان ملکوں میں جہاں بچوں کو گود لینے کا رواج یا اجازت ہے، ایسا اسی وقت کیا جا سکے گا جب یہ بات بچے کے بہترین فائدے میں ہو. اس بارے میں ادارہ سے منظوری لینا ہوگی. مہاجر بچوں یا پناہ کی درخواست کرنے والے بچوں کی حفاظت کا خاص انتظام کیا جائے گا. اس کے علاوہ معذور بچوں کی تعلیم و تربیت اور خاص طریقے سے دیکھ بھال کی جائے گی. نمبر 10، تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے. حکومت تعلیم کے نظام کو اس طرح بہتر بنائے گی کہ اس سے بچے کی صلاحیت اور شخصیت کو نکھارا جا سکے. اس کے علاوہ بچوں کو ایسے کاموں سے بچایا جائے گا جن سے ان کے صحت، تعلیم یا ذہنی اور جسمانی ترقی میں رکاوٹ پڑ سکتی ہے. نمبر 11، حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ جنگ، تشدد، ظالمانہ سلوک، لاپرواہی یا روٹ کھسوٹ کا شکار ہونے والے بچوں کا مناسب علاج اور دیکھ بھال کرے اور ان کی اپنے ماحول میں دوبارہ بحالی کے لیے ضروری کارروائی کرے. نمبر 12، تمام ممالک اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ معاہدے میں درج بچوں کے حقوق پر عمل درآمد کے لیے ضروری قانونی اور انتظامی کارروائی کریں. پاکستانی بچوں کی ملازمت کا ایکٹ. پاکستان کی قومی اسمبلی نے 1991 میں بچوں کی ملازمت کا ایک ایکٹ منظور کیا. اس ایکٹ کے تحت بچوں کی عمر کا تعین کیا گیا اور طے پایا کہ 14 سال سے کم عمر افراد بچوں کے زمرے میں آئیں گے. بچوں کے لیے مزدوری کے قوانین بنائے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں. نمبر 1، بچوں سے 7 گھنٹے سے زیادہ مزدوری لینا جرم ہے. نمبر 2، 7 گھنٹوں کے دوران 1 گھنٹہ آرام کے لیے دینا ضروری ہے. نمبر 3، اگر کوئی شخص 14 سال سے کم عمر بچوں سے 7 گھنٹے سے زیادہ مزدوری لیتا ہے یا 1 گھنٹے کا آرام کا وقفہ نہیں دیتا تو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. بچوں کے لیے صدارتی آرڈیننس. صدر پاکستان نے 1 جنوری 2000 کو ایک آرڈیننس جاری کیا. اس کو جو ونیائل جسٹس سسٹم آرڈیننس کا نام دیا گیا ہے. اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں. نمبر 1، جرائم میں ملوث بچوں کو حکومتی خرچ پر قانونی معاونت فراہم کی جائے گی. نمبر 2، ماتحت عدالتیں ہائی کورٹ کے حکم پر بچوں کی عدالتیں قائم کر سکیں گی. نمبر 3، اصلاحی اداروں میں بچوں سے زبردستی بیگار نہیں لی جائے گی. نمبر 4، زیر سماعت مقدمے کے بچے کی شناخت و کوائف وغیرہ اخبارات میں شائع نہ ہو سکیں گے اور بچے کو فیصلے کے 3 دن کے اندر اپیل کرنے کا حق حاصل ہوگا. بچوں کے لیے قومی پالیسی کی منظوری. وفاقی کابینہ نے بچوں سے مشقت کے خاتمے کے لیے 10 مئی 2001 کو قومی پالیسی کی منظوری دی. اس پالیسی کے اہم نکات درج ذیل ہیں. نمبر 1، بچوں کی مشقت کا انسداد کیا جائے. نمبر 2، ایسے بچے جو جرائم میں ملوث ہوں ان کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے گی. نمبر 3، بچوں کو رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے اصول کے لیے مراعات دی جائیں گی. حقوق انسانی کے لیے پاکستان کی جدوجہد. پاکستان اسلام کا گہوارہ ہے اور وہ کسی ایسے عمل کو پسند نہیں کرتا جو اسلامی تعلیمات کے منافی اور انسانوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے حقوق انسانی کے خلاف اور نسلی امتیاز کی ہر پالیسی کی مخالفت کی ہے. اور جب بھی کسی ملک کی طرف سے اس قسم کی پالیسی روا رکھنے کا مظاہرہ کیا گیا تو پاکستان نے ہر بین الاقوامی فورم میں اس ملک کی نہ صرف برملا مخالفت کی بلکہ اس کی مذمت بھی کی. اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 11 نومبر 1965 کو جب روہوڈیشیا، زمبابوے، कि वजीर आजम मिस्टर आईन स्मिथ ने एक तरफा तौर पर होडेशिया की आज़ादी का ऐलान किया और बरतानिया की लेबर हुकूमत ने उसे गैर कानूनी करार दिया, तो ये मसला अकवाम मुत्तहिदा में जेर बहस आया। सलामती कौंसिल ने आईन स्मिथ की इस कार्रवाई की मजम्मत की और तमाम हुकूमतों से कहा कि वो इस गैर कानूनी नस्ल परस्त तकलीती निज़ाम को हरगिज़ तस्लीम न करें, और फैसला किया गया कि इस निज़ाम के खिलाफ इब्तदाई पाबंदियों का तरीका आयद करें। इस मौके पर वजीर खारजा पाकिस्तान मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि रोडेशिया के वजीर आजम मिस्टर आईन स्मिथ ने सारी महजब दुनिया को जो चैलेंज किया है उसका वाजह जवाब देना चाहिए। इस नाजुक घड़ी में पाकिस्तान की आवाम अफ्रीकी इतिहाद के इदारे के साथ हैं और इसे अपने मुकम्मल तआवुन और हिमायत का यकीन दिलाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने हमेशा भारत की जारहियत के खिलाफ कश्मीरियों की सियासी हिमायत की है। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए हर बैनुल अक्वामी फोरम में आवाज़ बुलंद की है और कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हमेशा कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया है। पाकिस्तान के आइन में बुनियादी हकूक। किसी मुल्क के दस्तूर में बुनियादी हकूक की मौजूदगी आवाम की आज़ादी की जमानत होती है और कोई दस्तूर भी उनके बगैर जमहूरी कहलाने का हक नहीं रखता। पाकिस्तान के मौजूदा आइन में बुनियादी हकूक को बड़ी अहमियत दी गई है और साथ ही ये वाजे कर दिया गया है कि कोई कानून जो इन बुनियादी हकूक से मुतासादिम होगा कल अदम करार दे दिया जाएगा। अलबत्ता इनका इतलाक अफवाज पाकिस्तान पुलिस या किसी ऐसी तंजीम पर नहीं होगा जिनको अमन अमान बरकरार रखने पर मामूर किया गया हो। बुनियादी हकूक के अहम नुकात दर्ज झेल हैं। नंबर एक, सियासी आज़ादी। मुल्क में हर फर्द को सियासी आज़ादी हासिल होगी बशर्ते कि वो सरकारी मुलाजिम हो, सियासी जमात बनाने या किसी सियासी जमात में शमूलियत का पूरा हक हासिल होगा। हर सियासी जमात के लिए अपने ज़राए आमदनी का हिसाब देना लाजमी है। दस्तूर के मुताबिक हर शहरी को अंजुमन और यूनियन बनाने का हक हासिल है बशर्ते कि इससे अमन अमा में खलल ना पड़ता हो। नंबर दो, तहरीर और तकरीर की आज़ादी। हर शख्स को तहरीर और तकरीर की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी बशर्ते कि इस हक को कानूनी हदूद में रहकर इस्तेमाल किया जाए ताकि इस्लाम की शान शौकत, पाकिस्तान के दिफा, दोस्ताना खारजा ताल्लुकात, अमन अमा, इखलाकी इक़दार और अदलिया पर जोर ना पड़े और इसका मकसद लोगों को जुर्म करने के लिए भड़काना ना हो। नंबर तीन, हक मजहब। हर शख्स को कानून, अमन अमा, इखलाकी हदूद के अंदर किसी भी मजहब पर कारबंद होने और उसकी तरवीज का हक हासिल होगा। इसी तरह हर मजहबी फिरके को अपनी इबादत गाहें बनाने और उनकी हिफाजत का हक हासिल होगा। नंबर चार, मसावात। मुल्क के तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं और इनमें किसी बुनियाद पर भी कोई तमीज़ रवा नहीं रखी जाएगी। इनको यकसा कानूनी तहफ़ हासिल होगा। इसके अलावा जिनसी इम्तियाज को ख़त्म करके मर्दों और औरतों को बहैसियत यकसा दर्जा दिया जाएगा। नंबर पाँच, हक मुलाजमत। मुल्क के हर शहरी को बशर्ते कि वो इसकी अहलियत रखता हो काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत हासिल करने का हक है और इस सिलसिले में नस्ल, मजहब, जात, जिन्स और सुकूनत की बुनियाद पर किसी को महरूम नहीं किया जाएगा। अलबत्ता आज़ादी हासिल है। नंबर छः, हक ज़बान और सकाफत। पाकिस्तान की कौमी ज़बान तो बहरहाल उर्दू है लेकिन अगर किसी तबके की अपनी ज़बान और सकाफत हो तो उन्हें इसका तरवीज का पूरा हक हासिल है और कानून की हदूद में इस मकसद के लिए इदारे कायम करने की भी आज़ादी हासिल है। नंबर सात, हक जायदाद। जायदाद को हुसूल शहरियों का बुनियादी हक है और इसकी खरीदो फरोख्त की आईनी और कानूनी हदूद में पूरी आज़ादी होगी। कानूनी जवाब के बगैर किसी शख्स को भी इसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। न हुकूमत किसी फर्द की जायदाद पर कब्जा करेगी माँ सिवाय इसके जो कौमी मफाद के लिए जरूरी हो। जायदाद मुल्क के कानून के मुताबिक ले जाएगी और इसका पूरा मुआवजा अदा किया जाएगा। नंबर आठ, तहफ्फुज़। हर मुल्क अपने शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करता है। मौजूदा दस्तूर के मुताबिक पाकिस्तान के शहरियों के वक़ार की तहफ्फुज़ भी जमानत दी जाती है लेकिन ये तहफ्फुज़ कानून के दायरे में हासिल होगा। तमाम अफराद को जाती और घरेलू जिंदगी में भी तहफ्फुज़ हासिल होगा। इसके अलावा किसी फर्द को एक ही जुर्म के सिलसिले में दो बार सजा नहीं दी जाएगी और ना ही उसे अपने खिलाफ गवाही पर मजबूर किया जाएगा। गवाही या शहादत लेने के लिए किसी भी शख्स को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा। मौजूदा दस्तूर में शहरियों की गिरफ्तारी और हब्स बेजा से भी तहफ्फुज़ दिया जाएगा लेकिन जब किसी फर्द का कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जाएगा या हिरासत में लिया जाएगा तो उसकी वजूहात भी बताई जाएंगी। पॉलिसी के उसूल। पाकिस्तान के आइन में पॉलिसी के उसूल बनाए गए हैं जिनका मकसद हुकूमत के तमाम इदारों पर यह अखलाकी पाबंदी आयद होती है कि वो हर कानून को उन उसूलों के मुताबिक वसा करें जो हुकूमत ने उनको दिए हैं। बुनियादी हकूक के हवाले से पॉलिसी के अहम उसूल दर्ज झेल हैं। नंबर एक, हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए कि बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत पाकिस्तान के उन तमाम शहरियों के लिए खाना, कपड़ा, मकान, तालीम और तिब्बी इमदाद जैसी बुनियादी जरूरियात जिंदगी का बंदोबस्त करे जो बेरोजगारी, कमजोरी, बीमारी या ऐसी ही किसी दूसरी वजह से आर्जी या मुस्तकिल तौर पर अपनी रोजी कमाने के काबिल ना हो। नंबर दो, हुकूमत की इकतसादी पॉलिसी में ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि बिला इम्तियाज मजहब, नस्ल या रंग लोगों की हर किस्म की बहबूद का बंदोबस्त किया जाए और इस पर इस तरह अमल दरामद होना चाहिए कि आम आदमी का मयार जिंदगी बुलंद हो। नंबर तीन, हुकूमत कम अज कम मुद्दत में मुख्तलिफ इलाकों की आबादी को तालीम और तरबियत के जरिए इस काबिल बनाने की जद्दोजहद करे कि वो हर किस्म की कौमी सरगर्मी और कौमी खिदमत में हिस्सा ले सकें। नंबर चार, हुकूमत के लिए लाजमी होगा कि गैर मुस्लिम फिरकों के जायज हकूक और उनके मफादात का तहफ्फुज़ करे। नंबर पाँच, मुमलिकत इस अमर का बंदोबस्त करने की कोशिश करेगी कि बच्चों, नौजवानों और औरतों से काम लेकर फायदा ना उठाया जाए या उन्हें ऐसे पेशों में काम करने पर मजबूर ना किया जाए जो उनकी उम्र और जिंस के लिहाज से मौजू ना हो। नंबर छः, हुकूमत इस अमर की जामिन होगी कि किसी तरह की अदायगी के बगैर लोग कानूनी अदालतों से इंसाफ हासिल कर सकें। पाकिस्तान में अकलियतों के हुकूक। हर वो शहरी जो पाकिस्तान में गैर मुस्लिम है उसका शुमार अकलियत में किया जाता है। पाकिस्तान चूंकि ऐसा इस्लामी मुल्क है इसलिए पाकिस्तान में अकलियतों के इस्लामी उसूलों के अन मुताबिक हैं। इस्लामी रियासत के शहरी की हैसियत से गैर मुस्लिम के हकूक हसब जेल हैं। नंबर एक, जानो माल की हिफाजत। हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि गैर मुस्लिम के जानो माल की हिफाजत करे। इस तरह एक मुसलमान के जानो माल की हिफाजत का फर्ज उस पर आयद होता है। इस सिलसिले में मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब बराबर हैं। अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करेगा तो इसका बदला इसी तरह लिया जाएगा इस तरह मुसलमान को कत्ल करने की सूरत में लिया जाता है। गैर मुस्लिम रियाया के मालो मता और इमलाक की हिफाजत भी यही अदलो एहतमाम था। इसमें किसी मुसलमान को तसरुफ का हक नहीं है। नंबर दो, इज्जत की हिफाजत। हुकूमत गैर मुस्लिम रियाया की इज्जत व आबरू की भी जामिन है। इसकी बेइज्जती करना, गाली देना और इसे मारना पीटना ममनू है। ऐसे अफराद जो इस किस्म के जराइम में मुलविस होंगे उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी और किसी को भी रियायत ना दी जाएगी। नंबर तीन, मुआशी हुकूक। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को मुकम्मल मुआशी हुकूक हासिल हैं। उन्हें हर किस्म के कारोबार, तिजारत और माली मामलात की आज़ादी है और हर किस्म का पेशा अख्तियार करने की इजाज़त है। इसके अलावा गैर मुस्लिम की मुआशी कफालत की भी हुकूमत मुआशी कफालत भी हुकूमत के जिम्मे है। अगर गैर मुस्लिम रोजी कमाने से आजिज आ जाएं तो उनके गुजारे के लिए बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर किया जाता है। नंबर चार, मजहबी हुकूक। मुल्क में तमाम गैर मुस्लिमों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। वो अपने मजहबी फ़राइज़ और मरासिम अपने अकीदे के मुताबिक आज़ादी से अदा कर सकते हैं। इसके अलावा गैर मुस्लिम को वोट देने का पूरा पूरा हक है। मुल्क में अकलियतों को कौमी असम्बली में नुमाइंदगी हासिल है। मुल्की मामलों के बारे में इनसे मुशावरत की जाती है। नंबर पाँच, मजहबी कानून का एहतराम। गैर मुस्लिमों के अपने मजहब के कानून में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाती। अदालतों में उनके कानून के मुताबिक ही फैसले होते हैं। मारूजी सवालात। पाकिस्तान का नजरियाती व आईनी इरतका। बाब अव्वल सवाल, नजरिए से क्या मुराद है? जवाब, किसी तहजीबी, सियासी या मुआशी तहरीक की मनसूबाबंदी का इल्मी बयान नजरिया कहलाता है। सवाल, दो कौमी नजरिए से क्या मुराद है? जवाब, दो कौमी नजरिए से मुराद दो कौमें जिनका नजरिया हयात, तर्ज जिंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। सवाल, नजरिया पाकिस्तान से क्या मुराद है? जवाब, नजरिया पाकिस्तान उस चीज का नाम है कि इस जमीन के अंदर इस्लाम राइज हो, अफराद पर भी, जमात और हुकूमत पर भी, और तमाम क़ुव्वतों से कवी तर क़ुव्वत इस्लाम है। सवाल, बरेज़ग़ीर में दो कौमी नज़रिए के इर्तका के मौजूद अनासिर कौन से थे? जवाब, नंबर एक, मजहबी अनसर। नंबर दो, मुआशी व मुआशरती अनसर। नंबर तीन, जुग्राफियाई अनसर। नंबर चार, सकाफती अनसर। नंबर पाँच, सियासी अनसर। सवाल, हिंदुस्तान में दो कौमी नज़रिए की बुनियाद किसने रखी? जवाब, सर सैयद अहमद ख़ान ने। सवाल, अल्लामा इकबाल के नज़दीक दो कौमी नज़रिया क्या है? जवाब, अमृतसर में 1909 में इकबाल ने कहा कि मैं खुद इस ख्याल में रह चुका हूँ कि इम्तियाज मजहब मुल्क से उठ जाना चाहिए, मगर अब मैं सोचता हूँ کہ قومی تشخص کو محفوظ رکھنا ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے. سوال: قائد اعظم کے نزدیک دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ جواب: انسانی زندگی کے متعلق مسلمانوں اور ہندوؤں کے تصورات بالکل مختلف ہیں. جیسا کہ ایک قوم کا لیڈر دوسری قوم کے لیڈر کا مخالف ہوتا ہے، اسی طرح ایک قوم کی فتح دوسری قوم کی شکست ہوتی ہے. ایسی دو قوموں کی حکومت کی ایک گاڑی کے دو بیل بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں لڑنے مرنے پر اتر آئیں گے اور آئینی عمل خاک میں مل جائے گا. سوال: مطالبہ پاکستان کے اسباب یا پانچ محرکات کے نام لکھیں. جواب: نمبر ایک، اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش. نمبر دو، انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل. نمبر تین، برطانوی جمہوری اداروں کی ترویج. نمبر چار، دو قومی نظریہ. نمبر پانچ، مسلمانوں کو ثقافتی ورثے سے محروم کرنے کی سازش. سوال: مسلم لیگ کے قیام کی پانچ وجوہات لکھیں. جواب: نمبر ایک، کانگریس سے مسلمانوں کی بددلی. نمبر دو، ہندو قوم پرست تحریکیں. نمبر تین، بندے ماترم. نمبر چار، تقسیم بنگال کا رد عمل. نمبر پانچ، جدید ہندو لٹریچر. سوال: آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب: 30 دسمبر 1906 کو. سوال: مسلم لیگ کے پہلے صدر کون تھے؟ جواب: نواب وقار الملک. سوال: آل انڈیا مسلم لیگ کا دفتر کہاں بنایا گیا تھا؟ جواب: علی گڑھ میں. سوال: پشچم بنگال کی منسوخی کا اعلان کب کیا گیا؟ جواب: 12 دسمبر 1911. سوال: بر صغیر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا معاہدہ کب ہوا اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: 1916 میں، جسے میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے. سوال: میثاق لکھنؤ کے اصول کیا تھے؟ جواب: نمبر ایک، جداگانہ انتخابات. نمبر دو، اقلیتوں کو تحفظ کا احساس. نمبر تین، صوبائی خود مختاری. نمبر چار، اقلیتوں کو دستوری تحفظ. نمبر پانچ، مسلمانوں کو اقتدار میں نمائندگی. سوال: قائد اعظم نے مسلم لیگ میں کب شمولیت اختیار کی؟ جواب: 1913. سوال: مسلم لیگ کے دونوں دھڑوں کے نام لکھیے. جواب: جناح لیگ اور شفیع لیگ. سوال: قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے؟ جواب: دسمبر 1926 میں. سوال: خطبہ الہ آباد کے اہم نکات بیان کیجیے. جواب: نمبر ایک، اسلام ایک زندہ قوت ہے. نمبر دو، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. نمبر تین، مسلمان ایک قوم ہے. نمبر چار، متحدہ قومیت کی تردید. نمبر پانچ، ہندو مسلم الگ الگ قومیں. نمبر چھ، مسلم ریاست کی ضرورت. نمبر سات، علیحدہ وطن کا مطالبہ. نمبر آٹھ، ہندوستان کے ضروری اتحاد. سوال: سندھ اسمبلی نے مسلمانوں کی آزادی کا مطالبہ کب کیا تھا؟ جواب: 17 اکتوبر 1937 کو. سوال: لارڈ ویول ہندوستان کا وائس رائے بن کر کب آیا تھا؟ جواب: 1944 میں. سوال: مسلمانہ نے ہند نے یوم نجات کب بنایا تھا؟ جواب: 26 دسمبر 1939 کو. سوال: قرارداد پاکستان کب پیش کی گئی؟ جواب: 23 مارچ 1940 کو. سوال: لارڈ ویول کی جگہ کسے وائس رائے بنا کر ہندوستان بھیجا گیا؟ جواب: لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو. سوال: تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کب ہوا تھا؟ جواب: 3 جون 1947 کو. سوال: پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب: چودھری رحمت علی نے. سوال: آل انڈیا مسلم لیگ کی پہلی خاتون صدر کون تھیں؟ جواب: بیگم عبداللہ ہارون. سوال: خلافت کمپنی کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب: 1919 کو. سوال: تحریک خلافت کے بڑے بڑے مقاصد کیا تھے؟ جواب: نمبر ایک، ترکی کی خلافت برقرار رکھی جائے. نمبر دو، مقامات مقدسہ ترکی کی تحویل میں رہیں. نمبر تین، ترکی کی سلطنت کو تقسیم نہ کیا جائے. سوال: خلافت کمپنی کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ جواب: لکھنؤ میں. سوال: تحریک ہجرت کا آغاز کب ہوا اور کن شخصیات کے کہنے پر ہوا؟ جواب: مئی 1920 کو مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالباری اور دیگر علماء کے کہنے پر. سوال: تحریک ہجرت میں کتنے مسلمانوں نے افغانستان کی طرف ہجرت کی تھی؟ جواب: تقریباً 15 سے 20 لاکھ افراد نے. سوال: تحریک خلافت کے خاتمے کا فوری سبب کون سا واقعہ تھا؟ جواب: چورا چوری کا واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ جواب: فروری 1922 کو گورکھپور میں. سوال: لکھنؤ کے کس اجلاس میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی تھی؟ جواب: آل پارٹیز کے اجلاس میں. سوال: نہرو رپورٹ کے حتمی مسودے کو منظور کرنے کے لیے एक ऑल पार्टीज नेशनल कन्वेंशन का इनका किया गया था, बताइए कब? जवाब दिसंबर 1928 में। सवाल, कांग्रेसी वजारतें कब से कब तक बरसरे इकतदार रहीं? जवाब जुलाई 1937 से नवंबर 1939 तक। सवाल, कांग्रेसी वजारतों ने मुस्ताफी होने का ऐलान कब किया? जवाब दिसंबर 1939 में। सवाल, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को कब ज्यादा मुनज़म किया? जवाब 1937 के इंतखाबात के बाद। सवाल, बरतानवी पार्लियामेंट ने कानून आज़ादी हिंद कब पास किया था? जवाब 18 जुलाई 1947 को। सवाल, रेड क्लिफ की बददियानती की वजह से मुस्लिम लीग अक्सरियत के कौन कौन से इलाके हिंदुस्तान को दिए गए? जवाब पंजाब में तहसील गुरदासपुर, बटारा, पठानकोट, फिरोजपुर की दो तहसीलें, बंगाल में जिला मुर्शिदाबाद और जिला नादिया का इलाका। सवाल, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कब और किसने तश्कील दी? जवाब 1857 में एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की। सवाल, तजावीज़ दिल्ली से क्या मुराद है? जवाब 1927 को दिल्ली में कायद आजम की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश से जो तजावीज़ सामने आई उन्हें तजावीज़ दिल्ली कहते हैं। सवाल, मुसलमानों ने कौन सी शराइत पेश की थी? जवाब नंबर एक, सिंध को बम्बई से अलहदा सूबा करार दिया जाए। नंबर दो, सूबा सरहद और बलोचिस्तान में असलाहत नाफिज की जाएं। नंबर तीन, पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी दी जाए। नंबर चार, मरकजी असम्बली में मुसलमानों को 1/3 नशस्तें दी जाएं। नंबर पाँच, मुस्लिम अक्सरियत के सूबों में हिंदुओं को वही मराद दी जाएं कि जो मुस्लिम अकलियत के सूबों में हिंदू मुसलमानों को देंगे। नंबर छः, किसी ऐसे मजहबी मुसविदा कानून पर गौर न किया जाए जिसकी मुखालफत इस फिरके के चौथाई अरकान करें। सवाल, साइमन कमीशन कब तश्कील दिया गया? जवाब 3 फरवरी 1928 को कायम हुआ और 5 मार्च 1928 तक काम करता रहा। सवाल, चौधरी रहमत तरी ने किस सियासी तंजीम का आगाज किया था? जवाब पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का। सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब नाफिज हुआ? जवाब 1935 में। सवाल, 1945-46 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मरकजी असम्बली में कितनी नशस्तें हासिल की थीं? जवाब 30 नशस्तें। सवाल, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कायदे आजम की खिदमात को कौन कौन सी थीं? जवाब नंबर एक, निज़ाम हुकूमत। नंबर दो, मरकजी काबीना की तंजीम। नंबर तीन, सूबाई हुकूमतों की तश्कील नौ। नंबर चार, महाजरीन का मसला। नंबर पाँच, नहरी पानी का मसला। नंबर छः, निज़ाम तालीम। नंबर सात, अक़वामे मुत्तहिदा की रुकनियत। नंबर आठ, स्टेट बैंक का क़याम। नंबर नौ, सिफारती ताल्लुकात की बहाली। सवाल, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने कब गवर्नर जनरल के हैसियत से ओहदे का हलफ उठाया? जवाब 15 अगस्त 1947 को। सवाल, पाकिस्तान कब अक़वामे मुत्तहिदा का रुकन बना? जवाब 1947 को। सवाल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क़याम कब अमल में आया? जवाब 1 जुलाई 1948 को। सवाल, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? जवाब लियाकत अली खान। सवाल, लियाकत अली खान कब से कब तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे? जवाब 15 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक। सवाल, लियाकत अली खान की शहादत कब हुई? जवाब 16 अक्टूबर 1951 को। सवाल, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का इजलास कब और कहाँ हुआ? जवाब 11 अगस्त 1947 को कराची में। सवाल, पाकिस्तान की अबूरी हुकूमत कब कायम हुई? जवाब 20 जुलाई 1947 को। सवाल, पहली दस्तूर साज असम्बली को कब और किसने बर्खास्त किया? जवाब 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने। सवाल, कायदे आजम के बाद किसे पाकिस्तान का गवर्नर जनरल नामजद किया गया? जवाब ख्वाजा नाजिमुद्दीन को। सवाल, लियाकत अली खान की शहादत के बाद कौन वजीर आजम के ओहदे पर फायज हुआ? जवाब ख्वाजा नाजिमुद्दीन। सवाल, मोहम्मद अली बोगरा कब से कब तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे? जवाब 17 अप्रैल 1953 से 11 अगस्त 1955 तक। सवाल, मोहम्मद अली बोगरा के बाद किसे पाकिस्तान का वजीर आजम नामजद किया गया? जवाब चौधरी मोहम्मद अली को। सवाल, पाकिस्तान का पहला आईन कब नाफिज हुआ? जवाब 23 मार्च 1956 को। सवाल, 1956 के आईन में मुल्क का क्या नाम रखा गया? जवाब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सवाल, 1956 के आईन की 5 खूबियां बयान करें। जवाब नंबर एक, लचकदार आईन। 2 यक ऐवानी मुकन्नना, 3 विफाक आइन, 4 तहरीरी आइन, 5 अदलिया की आज़ादी। सवाल, 1956 के आइन की नाकामी के 5 असबाब तहरीर करें। जवाब, 1 क़यादत का फुकदान, 2 सियासी जमातों का मजमून किरदार, 3 मुआशी अदम इस्तेहकाम, 4 जमहूरी रिवायात का फुकदान, 5 पार्लिमानी रूह की खिलाफ वर्जी। सवाल, पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत की नाकामी के 5 असबाब तहरीर करें। जवाब, 1 सियासी अबतरी, 2 नाकिस मनसूबा बंदी, 3 नाकाम खारजा पॉलिसी, 4 इकतदार की कशमकश, 5 नौकरशाही का रोल। सवाल, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के बाद किसे पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया? जवाब, जनरल इस्कंदर मिर्जा को। सवाल, हुसैन शहीद सुहरावर्दी कब से कब तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे? जवाब, 12 सितंबर 1956 से 17 अक्टूबर 1957 तक। मिस्टर सवाल, मिस्टर आई चंद्रीगर कब से कब तक वजीर आजम के अहदे पर फाइज रहे? जवाब, 17 अक्टूबर 1957 से 11 दिसंबर 1957 तक। सवाल, मलिक फिरोज खान नून की हुकूमत कब और किस तरह किसने खत्म की? जवाब, 17 अक्टूबर 1958 को सदर पाकिस्तान इस्कंदर मिर्जा ने फिरोज खान की हुकूमत खत्म कर दी और 1956 का आइन मनसूख कर दिया। सवाल, मुल्क पाकिस्तान में सबसे पहला मार्शल लॉ कब और किसने लगाया? जवाब, 7 अक्टूबर 1958 को जनरल अय्यूब खान ने। सवाल, 1958 में मार्शल लॉ लगाने की चंद वजूहात लिखें। जवाब, 1 सियासी अदम इस्तेहकाम, 2 मुआशी अदम इस्तेहकाम, 3 करप्शन का उरूज, 4 तजारती अदम इस्तेहकाम, 5 मसाइल की तरफ अदम तवज्जा। सवाल, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कब मुंतकिल किया गया? जवाब, जून 1959 में। सवाल, बुनियादी जमहूरियत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नया निज़ाम कब नाफिज किया गया? जवाब, 1 नवंबर 1959 में। सवाल, पाकिस्तान में दूसरा आइन कब नाफिज हुआ? जवाब, 1962 में। सवाल, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क़याम किस आइन के तहत हुआ? जवाब, 1962 के आइन के तहत। सवाल, 1962 के आइन की चंद खूबियाँ बयान करें। जवाब, 1, सदारती तर्ज हुकूमत, 2, वफाकी इकाइयों की मसावी हैसियत, 3, तहरीरी आइन, 4, वफाकी आइन, 5, यक ऐवानी मुकन्नना। सवाल, 1962 के आइन की नाकामी के चंद असबाब लिखें। जवाब, 1, फर्द वाहिद का अता करदा आइन, 2, बावास्ता तरीका इंतखाब, 3, मुतलकुल अनानी, 4, एहतसाब व तवाजुन का फुकदान, 5, बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम की खामियां। सवाल, 1962 का आइन किसने खत्म किया? जवाब, जनरल यहया खान ने। सवाल, सदर अयूब खान कब सदारत से सुबुकदोश हुए और किसने मुल्क का नज्म नस्क संभाला? जवाब, 25 मार्च 1969 को सदर अयूब खान सदारत के मनसब से सुबुकदोश हो गए और मुल्क का नज्म नस्क जनरल यहया खान के सुपुर्द कर दिया। सवाल, मगरबी पाकिस्तान की वहदत को कब खत्म किया गया? जवाब, 1 अप्रैल 1970 को मगरबी पाकिस्तान की वहदत को खत्म करके चारों सूबों पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में तकसीम कर दिया गया। सवाल, 1970 के इंतखाबात में अवामी लीग और पीपल्स पार्टी ने कितनी कितनी नशिस्तें हासिल की? जवाब, अवामी लीग ने मजमूई तौर पर 151 नशिस्तें और पीपल्स पार्टी ने 81 नशिस्तें हासिल की। सवाल, 1971 की जंग के बाद मशरकी पाकिस्तान का नया नाम क्या रखा गया? जवाब, बांग्लादेश। सवाल, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के चंद असबाब बताएं। जवाब, 1, हिंदुओं का असर और रसूख, 2, जबान का मसला, 3, मुजीब के 6 नुकात, 4, ब्यूरोक्रेसी का तर्ज अमल, 5, मुक्ति बाहनी का किरदार, 6, रूस भारत गठजोड़। सवाल, जुल्फकार अली भुट्टो ने कब सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला? जवाब, 23 दिसंबर 1971 में। सवाल, 1973 का आइन कब नाफिज किया गया? जवाब, 14 अगस्त 1973 को। सवाल, 1973 के आइन की चंद खूबियाँ लिखें। जवाब, 1, तहरीरी आइन, 2, नीम इस्तवार आइन, 3, वफाकी निज़ाम, 4, 2, ऐवानी मुकन्नना, 5, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, 6, बराह रास्त इंतखाबात, 7, अकलियतों का तहफ़ुज़। सवाल, 1973 के आइन की 5 इस्लामी दफात लिखें। जवाब, 1, खुदा की हाकमियत, 2, मुमलिकत का नाम, 3, सरकारी मजहब इस्लाम, नंबर 4 नजरिया पाकिस्तान पर यकीन। नंबर 5 इस्लामी नजरियाती कौंसल। सवाल, पाकिस्तान में सेनेट का पहला इंतखाब कब और किस आइन के तहत हुआ? जवाब, 1973 के आइन के तहत 4 जुलाई 1973 को हुआ। हर सूबे से ज्यादा ज्यादा अरकान का इंतखाब किया गया। सवाल, शिमला मुआहिदा किन दो ममालिक के दरमियान कब हुआ? जवाब, भारत और पाकिस्तान के दरमियान 28 जून 1972 से जुलाई तक रूस के शहर शिमला में। सवाल, जनरल जियाउल हक ने कब इख्तदार संभाला? जवाब, 5 जुलाई 1977 को। सवाल, ज़कात व उश्र ऑर्डिनेंस कब नाफिज हुआ? जवाब, जून 1980 को। सवाल, निफाज इस्लाम के लिए ज़िया हुकूमत ने कौन कौन सी कोशिशें की? जवाब, नंबर 1 निज़ाम ज़कात व उश्र, नंबर 2 इस्लामी नज़रियाती कौंसल, नंबर 3 निज़ाम अदल, नंबर 4 इस्लामी इस्लामी ताज़ीरात, नंबर 5 निज़ाम बैंकारी, नंबर 6 निज़ाम सलात, नंबर 7 इस्लामी यूनिवर्सिटी, नंबर 8 तालीमी पॉलिसी। सवाल, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद किसका दौरे हुकूमत शुरू हुआ? जवाब, मोहम्मद खान जुनेजो का। उन्होंने 23 मार्च 1985 से लेकर 29 मई 1988 तक बतौर वजीर आजम हुकूमत की। सवाल, जनरल ज़ियाउल हक का इंतकाल कब हुआ? जवाब, 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक हवाई हादसे में। ये सफा नंबर 221 है। पार्ट नंबर 19 यहाँ मुकम्मल होता है।